सार निर्णय ये है
कि बुद्धि नाशवान दुख रूप इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है। सार निर्णय ये है कि बुद्धि नाशवान दुख रूप इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है, मगर नित ही अशांत और भयभीत रहती है। आखिर शरीर विनाश को प्राप्त होता है और बुद्धि अधिक संकट लेकर इस शरीर से जुदा होती है, फिर वासना अनुसार दूसरे शरीर को धारण करती है। इसी तरह शारीरिक भोगों की आसक्ति को धारण करके अनेक जूनियों में विचरती है और दुख व सुख में भरमती रहती है। यह ही आवागमन रूप संसार है। तो ये वचन हमारे जीने के तरीके को बता रहा है, दर्शा रहा है। कहते हैं सार निर्णय ये है कि बुद्धि नाशवान दुख रूप इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है, मगर नित ही अशांत और भयभीत रहती है। हमने जब से होश संभाला है, या यूं कहिए कि जब से हम अपने पैरों पे हमने खड़े होना सीखा है, पैसा कमाना सीखा है, परिवार चलाना सीखा है, तब से हम यही कर रहे हैं। पैसा कमाते हैं, सुख के साधन इकट्ठे करते हैं, उनके द्वारा सुख भोगने की कोशिश करते हैं और उसी में जीवन की संतुष्टि, जीवन की सफलता समझते हैं। ये हमारी एक आम पद्धति है संसारी जीवन जीने की। लेकिन वो कह रहे हैं कि मगर नित ही अशांत और भयभीत रहती है, कि बुद्धि जो है नित ही अशांत और भयभीत रहती है। अशांत क्यों रहती है? क्योंकि जितने भी भोग हम जानते हैं, पहले तो उसके लिए पुरुषार्थ करना, पैसा कमाना, फिर उन भोगों को भोगना, उनको इकट्ठे करना, इसमें कितनी जद्दोजहद है, कितनी मेहनत है, कितनी बेचैनी है, हम सब जानते हैं। उसके पश्चात सब कुछ करके भी हर चीज की वैरायटी चेंज होती रहती है, फैशन चेंज होता रहता है, खाने पीने के पदार्थ चेंज होते रहते हैं, सामाजिक वातावरण बदलता रहता है। इतनी चीज तरह की चेंजेस होती हैं कि बुद्धि उसमें अशांत और भयभीत रहती है। भयभीत क्यों रहती है? क्योंकि आज जो तेरी कैपेसिटी है वो कल को रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं। सामाजिक स्थिति जो आज है वो कल को बदल तो नहीं जाएगी, ये भी पता नहीं। परिवार जैसा आज है वो कल को बदल तो नहीं जाएगा, कोई उसमें किसी की डेथ तो नहीं आएगी, कोई छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा। इतने फैक्टर्स हैं कि बुद्धि कभी भी स्थायी रूप से शांत हो ही नहीं सकती या संतुष्ट हो ही नहीं सकती। वो बेचैनी लेकर जीती है और भयभीत भी रहती है कि कहीं जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नष्ट ना हो जाए, उसमें कहीं परिवर्तन ना हो जाए। इसीलिए पूरा पुरुषार्थ करने के पश्चात भी सारे जीवन भर हम यही देखते हैं, परिवार में जितने भी मेंबर्स होंगे चाहे, कि उनके अंदर एक भय भी बना रहता है, उनके मन में एक अशांति या असंतोष भी बना रहता है। कोई भी आप देखते हैं कि एक वर्ष भी सेटिस्फाई होकर जीवन व्यतीत करने में सफल नहीं हुआ। तो ये प्रक्रिया दैनिक जीवन की इस प्रकार की है कि केवल एक वचन आपको गाइड कर रहा है कि बुद्धि चाहती तो संतोष है, चाहती तो परमानेंट सुख है, लेकिन असंतोष और भय के साथ वो जीती है मजबूरी। आगे कह रहे हैं कि आखिर शरीर विनाश को प्राप्त होता है और बुद्धि अधिक संकट लेकर इस शरीर से जुदा होती है। अब ये जो चीज है ये गुरु आपको सिखाना चाहता है, प्रभु आपको सिखाना चाहता है कि आखिर शरीर विनाश को प्राप्त होता है और बुद्धि अधिक संकट लेकर इस शरीर से जुदा होती है। तो फिर क्या होता है? फिर वासना अनुसार दूसरे शरीर को धारण करती है। इसी तरह शारीरिक भोग की आसक्ति को धारण करके अनेक जूनियों में विचरती है और दुख व सुख में भरमती रहती है, यह ही आवागमन रूप संसार है। अब यहाँ डेथ हो जाए, बात खत्म हो गया, सारी परेशानियों से छुट्टी मिल गई। क्योंकि मेरे बारे में फैक्ट जो है, जो रियलिटी है, वो दूसरी है, जिसको महाराज जी बुद्धि कर लिख रहे हैं, वही तो मैं हूं। बुद्धि कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है कि ऑपरेशन से निकाल के अलग कर दो। मुझको पता है कि मैं हूं, मुझको यह भी पता है कि मैं जानता हूं, मुझको यह भी पता है किस कारण से दुखी हो रहा हूं, मुझको यह भी पता है किस कारण से सुखी हो रहा हूं। जो कारण है वो मुझसे अलग है, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं अनुभव करने वाला जीव हूं या बुद्धि हूं, मैं सुख दुख महसूस करने वाला जीव या बुद्धि हूं, तो मेरे बारे में ये शास्त्र लिखा गया है। मेरे कल्याण के लिए, मेरे भले के लिए प्रभु ने सत्पुरुष धरती पर भेजा, उसके द्वारा ये शास्त्र प्रकट हुए प्रभु आज्ञा में। तो ये मेरा विज्ञान है। अब जो प्रभु मेरे लिए विज्ञान भेज रहे हैं लिखित रूप में, उसको तो मैं समझने की गहराई से कोशिश ही नहीं करता। मैं केवल जो संसार में लोग, जो चलन चल रहा है संसार में, मैं केवल उसी को अपना आदर्श बना लेता हूं और उसी में से उसको आदर्श के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर देता हूं। फिर कह देता हूं किसने देखा, मर गए तो खत्म हो गया सब कुछ। यहां तो मेरे बारे में फैक्ट दूसरा है, मैं देह कभी था ही नहीं, ना देह कभी हूं, ना कभी बन सकता हूं। देह मेरा एक एसेट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, या यूं कहिए कि देह मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा मैं सुख भोगता हूं और दुख भोगता हूं। तो सुख और दुख का जनरेटर है मेरी बॉडी, और सुख दुख भोगने वाला मैं हूं। तो इसीलिए ये वचन जब आप ध्यान से पढ़ें अकेले बैठकर, तो मुझे सोचना तो चाहिए कम से कम ये वचन लिख क्या रहा है, ये कह क्या रहा है, और मैं कैसे सोचता हूं और कैसे मैं समझता हूं। वो तो साफ कह रहे कि सार निर्णय ये है कि बुद्धि नाशवान दुख रूप इंद्रिय के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है। बुद्धि भोगती है, देह नहीं भोगती। आखिर शरीर विनाश को प्राप्त होता है और बुद्धि अधिक संकट लेकर इस शरीर से जुदा होती है। का मतलब बुद्धि और शरीर दो कभी एक हो ही नहीं सकते। बुद्धि को देह मिलती है, कुछ दिन देह रहती है, उस देह के द्वारा बुद्धि सुख और दुख भोगती है, और उसी में क्योंकि वो स्थायी नहीं है इसीलिए उसमें बेचैन रहती है और भयभीत रहती है। मेरी देह छिन तो नहीं जाएगी कहीं, इतनी मेहनत करके मैंने सारा साजो सामान इकट्ठा किया है, देह छूट गई, मेरी देह रोगी हो गई, तो मेरा क्या होगा। तो अंदर से मैं बुद्धि और शरीर को अलग करके नहीं जानता हूं, लेकिन सत्य यह है कि बुद्धि और शरीर कभी एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि में चेतना है और शरीर जड़ है। शरीर 1% भी कुछ नहीं जानता। मैं शरीर के बारे में जानता हूं, शरीर करके संसार के बारे में जानता हूं, लेकिन संसार और शरीर मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे बारे में यदि कोई जानता है तो एक ही है, वो ईश्वर, या फिर उसका अवतार जिसको हम गुरु कहते हैं, जो धरती पर मानव रूप में आया है मुझे ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए, तू है कौन, तू कर क्या रहा है। तू संसार में आता है, लोगों से ईर्ष्या करना शुरू कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि जिसका नाम हो जाता होता ना, तो उसको लगता है कि अरे इसको तो बड़ा सुख मिल रहा है, इसका तो नाम हो रहा है। अब वो नकल करके बेचारा क्या करता है, अभी तक तो चैन से था, अब वो भी नाम कमाने की कोशिश करता है कि मैं भी बड़ा इंसान, लोग मुझे जाने, मेरी तारीफ करें। अब बताइए, जो मुसीबत इसके लिए थी नहीं, इसने खुद ही पैदा कर ली नकल करके। जो नाशवान शरीर है, तू नाम किसका करेगा, तुझे कोई जानता ही नहीं, तुझे कोई देखता भी नहीं। तू तो बुद्धि है यानी जीव है, और लोग इस डेड चीज को, इस जड़ चीज को जिसको शरीर कहते हैं, उसको देख रहे हैं और उसी की तारीफ कर रहे हैं। अब बताइए, मेरे घर में कोई टेबल हो, उसी कोई तारीफ करे, तो विचार करो टेबल को समझते हैं क्या? टेबल को कभी अहंकार होता है कि मेरी बड़ी तारीफ हो रही है, मैं बड़ी अच्छी हूं। तो यही मेरी हालत है, हूं मैं जीव, जिंदा वस्तु हूं, मेरे अंदर चेतना है, मैं जानता हूं, मैं सुख महसूस करता हूं, मैं दुख महसूस करता हूं, लेकिन समझता क्या हूं? सारी जिंदगी जीते जीते गुरु भी मैंने धारण कर लिया, शास्त्र भी पढ़ लिए, लेकिन मनन मैंने कभी नहीं किया। जो वचन एक ही वचन है देखो, ये मनन करने की बात कर रहा है। मैंने इसको पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा, लेकिन मनन कभी नहीं किया, ये कह के ना, ये तो बुद्धि को अलग कर रहा है, देह को अलग कर रहा है। साफ साफ तो लिखा है कि बुद्धि नाशवान दुख रूप इंद्रिय के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है। बुद्धि भोगती है, इसके अंदर देह और देह के साथ जो साजो समान है वो भोगने की चीज है, सुख दुख के रूप में, जो मैं भोगता हूं या बुद्धि भोगती है या जीव भोगता है, या उसका नाम कह लो जीवात्मा भोगती है, नाम कोई भी रख लो। अब बताइए, मैं पता नहीं कब से सत्संग सुन रहा हूँ, कब से संत विलास पढ़ रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से सोचूं, क्या मैंने अपने बारे में इस प्रकार कभी सोचने की कोशिश की? आज भी इतना ज्ञान सीखने के पश्चात भी, सिखाने के पश्चात भी, क्या आज भी मेरी बुद्धि में ये ज्ञान स्थित है? चलते फिरते, उठते बैठते, क्या मेरे अंदर ये बात कभी आती है? एक बार भी आती है कि मैं देह नहीं हूं, देह से अलग हूं? देह तो कभी ये मर जाएगी, एक्सीडेंट से मर जाएगी। अभी घर से सुरक्षित निकला, खबर आ गई 10 मिनट में कि उनकी तो डेथ भी हो गई। तो शरीर इतना टेम्परेरी है और मैं परमानेंट हूं, मेरे अंदर जीवन है, मैं अनुभव करता हूं, मैं सुख दुख महसूस करता हूं, मैं बेचैनी महसूस करता हूं, मैं शांति महसूस करता हूं। तो जब संसार में वो कह रहे हैं कि अशांति और भय है, ये परमानेंट है तुम्हारा, तो मुझे क्या शांति का रास्ता तलाश नहीं करना चाहिए? क्या हमेशा भय में ही जीना चाहिए? क्या बेचैनी लेकर ही मैं जीता रहा? तो कारण मेरे परेशानी के बहुत होते हैं, मेरी अपनी संतान भी हो जाती है, मेरा अपना घर का मकान ही हो जाता है, मेरा पड़ोसी ही मेरी बेचैनी का कारण बन जाता है, मेरा एम्प्लॉयर ही मेरी बेचैनी का कारण बन जाता है। इतने साधन है आपकी आपको बेचैन करने के, आपका चैन को छीनने वाले, कि आप मनुष्य का जन्म कभी भी किसी भी हालत में किसी भी युग में चैन से शांति से व्यतीत हो ही नहीं सकता। नहीं तो ये वचन नहीं कहता कि मगर नित ही अशांत और भयभीत रहती है, ये मेरी प्रैक्टिकल कंडीशन है, मुझे इसे सोचना चाहिए, इस पर गहरा मनन करना चाहिए, जिसको कहते हैं विचार करना चाहिए। लेकिन मैं जैसा लिखा है वैसा विचार नहीं करता, जो मेरे तरीके हैं सोचने के मैं उस तरीके से विचार करता है। इसीलिए शास्त्र की सरल बात भी सारा जन्म मेरी समझ में ही नहीं आती कि शास्त्र कह क्या रहा है, मैं समझ क्या रहा हूं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि आखिर शरीर विनाश को प्राप्त होता है और बुद्धि अधिक संकट लेकर इस शरीर से जुदा होती है, चैन से मरता भी नहीं इंसान, अधिक संकट लेके जुदा होती है। वो का संकट होता है? कह रहे हैं फिर वासना अनुसार दूसरे शरीर को धारण करती है, इसी तरह शारीरिक भोगों की आसक्ति को धारण करके अनेक जूनियों में विचरती है और दुख व सुख में भरमती रहती है, यही आवागमन रूप संसार है, ये मेरे जीने का मरने का तरीका है। अब बताइए कि मैं कितना पढ़ लिख गया, कितने बड़े बड़े मैंने सर्विसें कर ली, कितने बड़े बड़े रोजगार कर लिए, लेकिन अपने बारे में मैंने ABCD भी नहीं सीखी। ये मेरी दयनीय हालत है मेरी बुद्धि, और कितना लोगों को गाइड करता हूं, कितना नाम कमाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी कमजोर है कि सरल सी बात ही मेरी समझ में नहीं आती। वाणी साफ कह रही है कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए, जिस कामना को लेकर जिस वासना को लेकर तो इस संसार से विदा होता है। वासना का मतलब ये नहीं होता कि एक इच्छा को लेकर मैं विदा हो गया, वासना गुरु पाप वासना है वो, हजारों प्रकार की सैकड़ों प्रकार की इच्छाएं तेरे अंदर जो संस्कार रूप में बन जाती है, उसके कारण तेरा जो स्वभाव बन जाता है वो सब कुछ वासना ही है। उस वासना को लेकर जब ये बुद्धि शरीर को छोड़ती है तो तुरंत ही नया शरीर इसका वासना के अनुसार तैयार हो जाता है। और इस जन्म में और पिछले जन्मों में जिन कर्मों का फल मैं नहीं भोग पाया, वो सब कुछ भोगने के लिए जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, अगला जन्म हमको दे दिया जाता है। वहां भी हम उस प्रारब्ध के अनुसार जीने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। वहां भी स्वतंत्र नहीं हूं मैं, बंधन में हूं। तो जीव यदि बंधन से मुक्त होना चाहता है तो एक ही रास्ता है कि ऐसा जीवन जिए, इस तरीके से जिए कि मन के अंदर तृष्णा का संकल्प उठना बंद हो जाए। मन के अंदर तृष्णा का या कामना का या इच्छा का संकल्प उठना बंद हो जाए। जब मन का संकल्प बंद हो जाएगा तो बुद्धि मन से स्वतंत्र हो गई या नहीं हो गई? जब मन से स्वतंत्र हुई तो देह से भी स्वतंत्र हो गई, क्योंकि मन के द्वारा ही देह का अनुभव होता है। आप यहीं बैठे हो, किसी भी मेथड से आपके मन का संकल्प उठाना यदि बंद कर दिया जाए तो आपको इस देह संसार का अनुभव बंद हो जाए, तुरंत ही बंद हो जाए। समाधि है क्या? यही तो समाधि है। सिमरन की वो कला, ईश्वर भक्ति की वो कला, जिसमें मनुष्य के अंदर या जीव के शरीर के अंदर जो मन है, उस मन के अंदर संकल्प का अपना निल हो जाता है। तो उस हालत में ये बुद्धि समाधि में प्रवेश कर जाती है। समाधि उस हालत को कहते हैं जहां बुद्धि के आगे अज्ञान नाम की चीज है ही नहीं, जहां बुद्धि के आगे बेचैनी नाम की चीज है ही नहीं, जहां बुद्धि के आगे भय नाम की चीज है ही नहीं। तो उस अनुभव को ईश्वर का अनुभव कहा जाता है। वहां शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रसन्नता का सागर है, और संसार में भय और बेचैनी। तो इतनी बड़ी चीज मेरी देह के अंदर मौजूद है और संसार में मैं एक एक बूंद सुख के लिए कैसे तरसता हूं? कैसी दयनीय हालत है मेरी कि पूरा जन्म बीत गया, मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं बीता हुआ चैन से मैं व्यतीत कर सकूं या किया हो, मैं एक दिन भी नहीं बीता हूं। तो गुरु बड़े भाग से मिला, ये शास्त्र कितने भाग से मिला और ये शास्त्र कितना करेक्ट एनालिसिस दे रहा है। कहा कर रहा है कि तू मनुष्य है, तेरी देह तेरा स्वरूप है, इसकी तू रक्षा कर, इसका तू नाम कमा। और मैं विचारवान होने के बाद भी यही काम कर रहा, तो मैं विचारवान हूं। कैसा विचारवान हूं? संसारी विचारवान हूं। आध्यात्मिक विचार मेरी बुद्धि पकड़ ही नहीं रही है। यदि तेरी बुद्धि आध्यात्मिक विचार पकड़ेगी तो याद रख, तू संसार में नाम कमाने की कोशिश कम से कम नहीं करेगा। तेरी बुद्धि का होश में आने की पहचान है ये, तू अंदर से नाम कमाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तुझको सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं जो नाम कमाते हैं, इसलिए तू भी उनकी नकल करके नाम कमाने में खुशी हासिल करता है। सत्य यह है कि गुरु की क्या पहचान है? गुरु निर्माणता होती है उसके अंदर। पांच गुण होते नहीं, जैसे पांच विकार है ऐसे पांच गुरु भी होते, तो गुरु के अंदर निर्माणता होती है, मान होता ही नहीं है। उसका नाम यदि किसी ने करने आए तो प्रभु करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका नाम होगा तो लोग प्रभु की, उसके नाम से प्रभु की भक्ति करेंगे, उस मार्ग पे चलने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसके नाम की तो उपयोगिता है। तेरे नाम की क्या उपयोगिता है? तू तो इच्छा में ही फंसा हुआ है। तो इसीलिए जो निर्माण है उसका ये प्रकृति प्रभु खुद ही नाम करते हैं। क्यों करते हैं? कि उसके नाम के द्वारा लोगों की बुद्धि जागृत होगी और लोग इस गलत फहमी से बचेंगे कि मैं देह हूं। इसीलिए मनुष्य जन्म विचार से चलने के लिए मिला है, और मैं विचार की जरूरत ही महसूस नहीं करता। एकदम से मूढ़ होकर, जिसको हम मूर्ख कह देते हैं, बड़ा मैंने बड़ी डिग्री इकट्ठी की है, बड़ा पैसा इकट्ठा किया है, बड़े बड़े बिजनेस किए हैं, बड़ी बड़ी सर्विस किए हैं, लेकिन हूं मैं मूर्खता मूर्खी, क्योंकि अपने बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो संसार के बारे में मुझे क्या पता होगा? मुझको पता ही नहीं। जो मेरे दुख का स्रोत है उसको मैं सुख का साधन समझ रहा हूं। तो संसार की माया जिसने जितनी ज्यादा इकट्ठी की है, जिसने जितना नाम कमाने की कोशिश की है, जिसने जितना ज्यादा भोगविलास करने की कोशिश की है, याद रखिए वो एक साधारण मनुष्य के बारे तुलना में वो ज्यादा पतित इंसान है, क्योंकि उसने पांच विकारों को गहरा किया है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं, जो प्रकृति के ये पांच विकार हैं। क्योंकि प्रकृति और शरीर ये पांच तत्व से बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांच तत्वों का आउटपुट है ये, इनका प्रोडक्शन है ये पांच विकार। तो मैं जब प्राकृतिक जीवन जी रहा हूं, अपने को देह समझकर जी रहा हूं कि मैं देह हूं, तो ये पांच विकार मेरी विरासत बन गए, मेरी संपत्ति बन गए। तो इस ऐसी संपत्ति जो पाप करवाए आपसे, वो तो जिंदगी का सत्यानाश कर देगी। तो इसीलिए साधारण वचन भी बड़ा गहरा वचन होता है, यदि हम उस पर मनन करें, ध्यान दें। तो आगे छठे वचन में कह रहे हैं महाराज जी, शारीरिक भोग नाशवान होने के कारण, शारीरिक भोग नाशवान होने के कारण नित अशांति और अधिक वासना के खेद को प्रकट करने वाले। फिर ध्यान से सुनिए, मैं जो सांसारिक विकास करता हूँ, इसके लिए लालायित रहता हूँ और दूसरों से कंपटीशन करता हूँ, ये वाणी उसके बारे में, ये वचन उसके बारे में क्या कह रहा है, फिर ध्यान से सुने। शारीरिक भोग नाशवान होने के कारण नित अशांति और अधिक वासना के खेद को प्रकट करने वाले हैं, जो परम दुख स्वरूप है। तो इसीलिए मैं जो सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहा हूं, अपने बच्चों के बारे में भी कल्पना कर रहा हूं, देश के बारे में वही कल्पना कर रहा हूं, तो ये परम दुख स्वरूप है। ऐसी शारीरिक यात्रा को समझ करके नित ही जीवन रूप परम तत्व आत्मा का विश्वासी और निधिध्यासी होना ही परम कल्याण के देने वाला निश्चय है। तो शरीर यात्रा क्या थी, कि ऐसी शारीरिक यात्रा को समझ करके नित ही, नित का मतलब निरंतर होता है, रोज नहीं होता है, नित का मतलब होता है निरंतर, नित ही जीवन रूप परम तत्व आत्मा का विश्वासी और निधिध्यासी होना ही परम कल्याण के देने वाला निश्चय है। परम कल्याण, जिसके बाद अन्य किसी कल्याण की आपको जरूरत ही नहीं रहती, वो स्थिति ही परम कल्याण को ही मोक्ष कहते हैं, परम कल्याण को ही परमानंद शांति कहते हैं, परम कल्याण को ही अमर जीवन कहते हैं। वो मेरा अमर जीवन है, बुद्धि की फिर मौत नहीं है वहां, बुद्धि इस देह से स्वतंत्र हो गई और आनंद जो प्रभु में था उसके साथ एक हो गई, फिर बुद्धि को संसार में क्या चाहिए। तो बुद्धि तो जब तक शरीर में रही, शरीर को अपना स्वरूप समझते रही, तब तो परेशानी रही, भयभीत रही, बेचैन रही, वो दुखी रही। तो इसीलिए मानव जन्म गुरु प्राण होकर ईश्वर भक्ति के लिए जीने के लिए था। गुरु प्राण क्यों, क्योंकि गुरु की बात ही तो आपको बुद्धि देगी, जी तो आपकी बुद्धि के निर्णय बदलेंगे ही नहीं। महाजी को मैंने गुरु बना लिया कहने मात्र के लिए, बुद्धि मेरी वैसी की वैसी संसारिक है, तो क्या सीखा मैंने, क्या किसी को मैं सिखाऊंगा। जिसकी बुद्धि खुद ही अपने लिए होश में नहीं आई है, वो दूसरों को क्या सिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको, हम एक दूसरे को सिखाना छोड़ दें, इसका मतलब एक ही है। माज कहते प्रेमी पांच नियम का पालन करो, अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करो, मिलकर बैठो और दूसरों को भी, जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हो वास्तव में ईमानदारी से वैसा ही, तो दूसरों को भी आपके जीवन से प्रेरणा मिलेगी। यदि आप में पहले ही खोट है, कुछ संसार में प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों को, लोगों को भी आप संसार में प्राप्त करने की कोशिश में लगा दोगे थे और क्या करोगे। जैसी आपकी अंदर की करनी है वैसा ही तो प्रभाव आपका बाहर जाएगा, ये नेचुरल प्रक्रिया है, कोई बनावट आगे इसके आगे नहीं चलती। इसलिए मैंने ईमानदारी से पांच नियम अपनाने के मार्ग पर चलना है, ईमानदारी से उसके अनुसार मैंने जीवन जीना है और अपनी बुद्धि के निर्णय को, बुद्धि के निश्चय को बदलना है कि मैं जीव हूं, मैं बुद्धि हूं जिसमें चेतना है और देह मेरी है, लेकिन ये देह जड़ है। जिस तरह पैसा मेरा है, मकान मेरा है, परिवार मेरा है, उसी प्रकार ये देह भी मेरी है, लेकिन मैं देह नहीं हूं। देह तो कभी भी मिट जाएगी, मैं फिर बच जाऊंगा और प्रकृति के नियम अनुसार, ईश्वर के कानून के अनुसार ये नई देह मेरी खड़ी हो जाएगी और जो कुछ भी बने इस जन्म में, पिछले जन्मों में जो पाप करके, जो गलती की है, स्वभाव बिगाड़ा है, उसके अनुसार ही मुझको अगले जन्म में प्रारब्ध भोगने को मिलेगा। तो मैंने ऐसा जीवन जीना है कि प्रारब्ध भोगने को मिले मुझे, तब भी उसका असर मेरे ऊपर ना हो। वो कब हो सकता है? जब अंतर्यामी प्रभु की उपासना करके मैं अंदर उसका अनुभव करने लगता हूं, या अनुभव नहीं भी किया तो गुरु का जो निश्चय है, गुरु का जो दृढ़ है कि मंत्र ही ईश्वर है, मंत्र ही गुरु है, मंत्र ही ब्रह्म है, तो मंत्र है क्या? ये प्रभु का अवतार है। अंतर्यामी प्रभु है मेरे, मैं उनका संग तो नहीं कर सकता। पता हो तुम्हें भी मैं उनका संग नहीं कर सकता, तो कैसे संग करूंगा? इसीलिए प्रभु मंत्र रूप में अवतार लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि तू मेरा संग कर। कैसे कर? कि मंत्र को तू मौन होकर अंदर याद कर, उसको लाइव गॉड समझकर, साक्षात ईश्वर समझकर, मान कर नहीं कि मान लिया कि मैंने ये ईश्वर है। तू शास्त्र के विरुद्ध सोच रहा है, सत्पुरुषों के दृढ़ के विरुद्ध सोच रहा है। नहीं तो महर्षि रमण क्यों कहेंगे कि गुरु मंत्र ईश्वर आत्मा कुंडलनी एक चीज है? एक चीज कैसे हो गई फिर ये? तो इसीलिए जब तक मंत्र को आप साक्षात लाइव गॉड नहीं समझते, ईश्वर नहीं समझते, तब तक जप में जो प्रेम आना चाहिए, जो रस आना चाहिए, वो आपके अंदर कभी नहीं आएगा। वो तभी पैदा होगा जब आपकी बुद्धि में ये निर्णय होगा, ये निश्चय होगा, वो भी सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार होगा, क्योंकि लिखित रूप में है। त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, सब कुछ सिद्ध कर देता है। जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया पार, अपार मंगल का मतलब होता है मोक्ष। तो ये मंत्र आपको मोक्ष स्थिति तक ले जाएगा, तो इसके आगे समर्पण तो कर। जैसे शरीर को तो अपना स्वरूप समझता है नहीं, है ये जड़, लेकिन अपना स्वरूप समझ रहा है, ये तो तेरी गलती है। लेकिन गुरु कह रहा है कि मंत्र ईश्वर है, वो तेरा कल्याण रूप है, तेरा मोक्ष रूप है। इसलिए मैंने यदि सत्पुरुषों की बातों को जैसा उन्होंने लिखा है, जैसा उन्होंने कहा है, उसी के साथ समझकर यदि मैं अंदर की यात्रा पूरी करता हूं, तो एक दिन ये मारा मानव जीवन सफल होगा और ये दुख और क्लेश से हमेशा हमेशा के लिए मैं मुक्त होऊंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।